நல்ல விவகார பெரிய ஆசைகள் कुछ न कुछ एक आधार देते थे, विषय देते थे। आज आसिक और इंद्रवदन में आसिक भी खाते कोई अंतर नहीं है, तो इंद्रवदन ने विषय दिया है दुख भंजन। तो आज इंद्रवदन के विचार के आधार पर आपके सामने कुछ व्यवहारिक, कुछ आध्यात्मिक, आपके जीवन में दुख क्यों आता है तो उसका भंजन कैसे करें, निवारण कैसे करें, दोनों तरह से व्यवहार और अज्ञात, साधना में भी आता है, व्यवहार में भी आता है, दोनों बातों का ध्यान रखते हुए दुख भंजन पर आपके समक्ष विचार रखें। पहले तो यह है कि आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, जिसका अस्तित्व है उसका आप रूपांतर कर सकते हैं, मिटा नहीं सकते, और जिसका अस्तित्व नहीं है उसका विचार ही हमें दुख दे रहा है। पठित समाज सामने बैठा है, अगर दुख का अस्तित्व होता न कोई वैद्य मिटा सकता था, न कोई डॉक्टर, न कोई प्रार्थना, न कोई सिद्धि। दुख क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसकी चर्चा करूंगा, लेकिन एक विज्ञान की बात का आप अपने अंदर विचार करें। वेद क्या कहता है और वेद की बात का आधार लेकर विज्ञान ने क्या कहा। वेद कहता है नास्तो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता। जो है उसे आप स्वीकार करें या न करें, लेकिन वो रहेगा। आपके स्वीकार करने से गुलाब के फूल में सुगंध नहीं आई, वो है चाहे आप लें या न लें। आपके हाँ या ना कहने से, आपके हाँ कहने से न सुगंध आएगी और ना कहने से न सुगंध बन जाएगी। अस्तित्व अस्तित्व है, तो आपके हाँ और ना से कोई मतलब नहीं। आप गुलाब का फूल हाथ में स्वीकार करते हैं, उठा के लेकर फेंक देते हैं, आपकी बात है, लेकिन लेना और फेंकने में उसकी सुगंध का आपसे कोई मतलब नहीं, वो है। तो वेद कहता है कि नास्तो विद्यते भावना, जो है वो आपसे कोई मतलब नहीं, आपको उसकी जरूरत है। गुलाब कभी नहीं कहता कि मेरे पास आओ, जरूरत आपको। नदी नहीं कहती, नदी का अस्तित्व है, पानी का अस्तित्व है। नदी नहीं कहती कि स्नान करने आओ, हाथ धोने आओ, कि पूजा करने आओ, कि कपड़ा धोने आओ। नदी का अस्तित्व है, निर्णय आपका है कि पूजा करें या न करें, स्नान करें या न करें, लेकिन आप करें या न करें उससे नदी कोई मतलब नहीं, वो आप अपने लिए नदी के किनारे गए। आप नदी किनारे गए इसलिए नदी का अस्तित्व नहीं, उस अस्तित्व की जरूरत आपको है। नहीं जरूरत है तो कोई बात नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है। आप नमस्कार करें या न करें, सूरज निकलेगा, वो अस्तित्व है, उससे कोई मतलब नहीं कि आप नमस्कार करते हैं, पानी चढ़ाते हैं कि नहीं, वो तो आप अपने लिए करते हैं, मैंने बताया कि आपको फायदा हो। तो सबसे पहले पठित समाज के समक्ष वेद वाली बात विज्ञान के आधार पर रखना चाहूंगा। अस्तित्व सत का है और वेद ने इसी को आगे कह दिया सच्चिदानंद, सत चित और आनंद। जब आप जन्मे थे तो अस्तित्व में से प्रकट हुए, चेतना जागृत हुई, पिंड लिया और आप आनंद से आए, बचपन में था कोई दुख, बड़े घर में जन्मे या झोपड़ी में जन्मे, दुख तो आपने पैदा किया। ये जगत की रचना में जो पीड़ा है, जो दुख है, वो केवल आप मानते हैं, बाकी स्वीकार कर लीजिए तो बहुत आगे बढ़ जाएंगे। जिसे आप दुख मानते हैं वो तपस्या, तपोब्रह्म, एक शक्ति की ऊर्जा। जब दुख को तप मान लेंगे तो ऊर्जा का स्वरूप हो जाएगा। और अगर आप तप नहीं मानेंगे तो सारी जिंदगी हाँ हाय हाय करके बिता देंगे, मिलेगा कुछ नहीं। तो सबसे पहले मेरे प्रिय आत्मन, बिना तप के, साधारण भाषा में, बिना दुख को स्वीकार किए सुख की प्राप्ति होने वाली नहीं है। वेद ने कह दिया कि शक्ति प्राप्ति के लिए तप बहुत ही जरूरी है। उसी तप को न समझ करके हम लोग दुखी हो गए। समझने की बात, मेरा जन्म हुआ, नियम है प्रसव की पीड़ा, मेरी माने, आपकी माने, माँ की माने, प्रसव की पीड़ा को समझकर स्वीकार किया तो हमारा जन्म हुआ। आप दही का मंथन कर रहे हैं तो उसमें मक्खन निकलेगा। आपको देखकर कोई व्यक्ति अगर पानी का मंथन करेगा लेकिन उसमें से मक्खन नहीं निकले। इसलिए ये जानकारी होना जरूरी है कि किस तरह से, किस विधि से, किस चीज का मंथन करने से मक्खन निकलता है। आप भगवान को तो मानते हैं, लेकिन हमारे अंदर एक समझ भी तो होनी चाहिए। इसलिए वेद ने कह दिया कि आपके दुख का कारण आपका ज्ञान है, और अज्ञान का कोई अस्तित्व नहीं है। आप मान बैठे हैं बस वही है। तो सबसे पहले हमारा अज्ञान क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। हम दुखी क्यों हैं? अज्ञान के कारण, जिसका कोई अस्तित्व नहीं। पहला ज्ञान तो ये है, आए हैं तो एक दिन वापस जाना है। 100 साल बाद जाएं, 150 बरस बाद जाएं, 200 बरस बाद जाएं, हम कितनी सिद्धियां प्राप्त कर लें, कितने शक्तिमान हो जाएं, लेकिन वापस जाना निश्चित है। तो जब वापस जाना निश्चित है तो आप आए कहाँ से, उसका पता लगा लें। और जब पता लगा लेंगे तो दुख किस बात का? दुख है तो मोह का, दुख है तो आसक्ति का, अटैचमेंट का। आपने 2 करोड़ का कहीं पैसा खर्च किया, खर्च करने में कोई आपको दुख नहीं, लेकिन दुख तब हुआ जब 2 करोड़ के खर्च करने पर जो लाभ सोचा था वो नहीं मिला। तो 2 करोड़ खर्च करके लाभ, अरे आज नहीं मिला तो कल मिले, कल नहीं परसों, कर्म को छोड़। 1 साल खेत में फसल नहीं हुई तो क्या 1000 साल नहीं होगी? 1 साल आपका लड़का फेल हो गया तो क्या 1000 साल फेल होगा? ये सब बड़ी गंभीर बातें नहीं, लेकिन सोच सोच करके दबाव के कारण हम भटक जाते हैं। आपका विज्ञान भी कहता है कोई डेवलपिंग प्लांट है, जो डेवलप हो रहा है तो उसके ऊपर पत्थर रखिए तो ऊपर नहीं जाता, बगल से मोड़ लेता है। हमारे आप पर भी भविष्य का दबाव बहुत है, वर्तमान दबाव नहीं। एक पौधे पर जब पत्थर रखने से उसका विकास ऊपर तरफ रुक जाता है, जिधर जगह देता है मुड़ जाता है। इस बात को व्यवहार में लाइए, दबाव से ऊपर नहीं जाएगा, जिधर जगह देखेगा वो मुड़ जाएगा। वैज्ञानिकों ने प्रयोग करके देखा, आप खुले आम कोई प्लांट लगाएं ऊपर जाएगा, लेकिन वही गमले में रख के अंधेरे में रखते हैं और खिड़की खोल दें तो उसका मुंह विकास का खिड़की तरफ टेढ़ा हो जाएगा। यू नो द साइंस एंड एवरीबडी नोज इट, सो टेक इट ग्रांटेड। इसमें कोई तर्क करने की जरूरत नहीं। दबाव जब आएगा तो जिधर जगह देखे उधर चला जाए। इसे बड़े प्यार से एक बात कहना चाहता, आक्षेप नहीं लगाता, कलंक नहीं लगाता। हर वर्ग के लोग, हर मंडल के लोग, हर क्लास के लोग मेरे संपर्क में हैं। हाई सोसाइटी भी है, झोपड़ी वाले भी हैं सब। लेकिन बड़े प्यार से आपको समझाना चाहता हूँ, सभी के लिए बात नहीं है। वो झोपड़ी भी हो सकती है, महल भी हो सकता है। जिन बच्चों पर माता पिता का दबाव ज्यादा है, दबाव का मतलब बोल बोल के, अभी आपको बताया कि जब दबाव आएगा तो जिधर जगह देखेगा उधर पौधा मुड़ जाएगा। घर में जब माता पिता का दबाव होगा तो बच्चे थोड़े गलत मुड़ जाते हैं, क्योंकि बच्चों से जब पूछा तो चाइल्ड साइकोलॉजी में यही आया कि जब भी घर में जाइए बस कुछ न कुछ दबाव से बोलते रहते, फिर क्या करें। इसलिए कहीं भांग की आदत पड़ गई, शराब की आदत पड़ गई, जुए की आदत पड़ गई, ताश खेलने की आदत पड़ गई और पढ़ाई तरफ ध्यान नहीं। इसलिए भविष्य की बात करके या कोई नकारात्मक बात करके ना आप अपने आप को दबाइए और न किसी को दबाने की कोशिश कीजिए। 50% सुनने में आया, मैं नहीं रहूंगा तो तेरा क्या होगा, तो 8 दिन मर के देख लीजिए क्या होता है। ये दबाव कौन डालते, नाम लेके नहीं बोलता, प्राइवेटली मैंने कम टू मी उतर लेता है। स्वयं जी मैं नहीं रहूंगा तो इनका क्या होगा, मैंने कहा 8 दिन मर जाओ, हॉस्पिटल में प्राइवेटली आ गया। एक अहंकार आ गया कि मैं नहीं रहूंगा तो क्या, जब आप नहीं थे तो नहीं हुआ। आज का फर्ज आप अदा करो जो आपके हाथ में, कल की क्या चिंता करो। ये चिंता आपके भी माता पिता करते तो उनके भी माता पिता सब होता रहा, लेकिन बेकार का समय चिंता में बिताकर अपने आनंद का सत्यानाश आपने करें। कर्म करना, कर्म से भागने की बात नहीं, यही किसने समझाया। कर्म की भावना में अर्जुन तुझे दुख नहीं था, होता तो कर्म की बात करने के लिए मेरे पास मदद के लिए नहीं आता। एक बड़ी उच्च व्यवस्था है, हम कर्म करना चाहते हैं लेकिन कर्म का परिणाम देख कर जब प्रतिकूल जाता है तब हम दुखी हो जाते हैं। कम से कम 80% लोग कर्म से दुखी नहीं है, कर्म के फल। स्वामी जी कल क्या होगा, लड़का मेरा कहना मानेगा कि नहीं, पढ़ेगा कि नहीं, अरे आज पढ़ रहा कल क्यों नहीं पढ़ेगा, आप क्यों दबाव डालते। फिर पढ़े लिखे लोग भी बोल देते कि नहीं पढ़ेगा तो ऑटो रिक्शा चलाएगा। ये बेकार की बातें बोल करके आप बच्चों को क्यों दबाते या किसी को क्यों दबाते हो, क्योंकि मनोविज्ञान कहता है जो भी बात करो प्रेम से समझा के, हमारे पास भी लोग हैं ऐसी बात नहीं, लेकिन बचपन का जो संस्कार पड़ा वो नहीं जाना। आज लोग क्लास वन ऑफिसर बन गए, लेकिन बचपन में अगर आदत ब्लडी फूल कहने की आदत है तो बिना जरूरत बोल देते हैं। इसलिए गलत चीज का कभी अभ्यास नहीं करना चाहिए। या देखिए इन सब बातों को किस ढंग से बताएंगे, इसमें ना माँ की बात है, ना आपकी बात है, ना मेरी बात है, लेकिन दुख हम किस तरह मोल ले रहे हैं जबकि उसका कोई अस्तित्व ही नहीं। और हम अपने को दुखी माने बैठे हुए हैं, तो ये जरा अच्छी तरह समझिए। दो दान दूंगा, एक महाभारत का और एक रामायण। जब कर्ण ने प्रतिज्ञा की, कर्ण जबरदस्त है, कृष्ण ने स्वीकार किया। कृष्ण कुंती के पास आते हैं, कहते कर्ण के सामने कोई जीतने वाला नहीं, ये जबरदस्त पारंगत है, उसने प्रतिज्ञा कर ली है। इसलिए कुंती मैं तुझे ले चलता हूँ रात, तू आज हकीकत बता कि कर्ण किसका पुत्र है, नहीं तो मैं भी नहीं रोक सकता, जबरदस्त ताकत है, मैं नहीं बचा सकता तेरे बच्चों को। आप पढ़िए तो महाभारत, कहते मैं नहीं बचा सकता, लेकिन जो एक अभ्यास की बात है वो मैं बता रहा हूं। आप जानते हैं मैं केवल इशारा करूंगा। कुंती आती है और हमारे यहाँ तो कोई भी आए माँ बोलने का तो अभ्यास ही है, माँ बेटी उम्र के हिसाब से। कर्ण कहता आओ माँ। कुंती कहती है बेटे मैं माँ जैसी नहीं हूँ, तू मेरे में माँ देखता है, ले मैं तेरी असली माँ हूँ। कहे आज माँ क्या बोल रही, कहाँ बैठो सुना सुनाया तुम, आप जानते हैं। सब सुनने के बाद कर्ण कहता है अच्छा माँ तेरे कितने पुत्र, कुल तेरे कितने पुत्र। अभ्यास पांच का ही, ये भले ही मन घरन करता हो लेकिन अभ्यास 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 बोलने का अभ्यास। पांच माँ एक बार फिर सोच ले, ये माँ पर जोर दे के बोल रहा है याद दिलाने के लिए, लेकिन यहाँ एक मनोवैज्ञानिक बात है कि जो अभ्यास है याद दिलाने पर भी वही होता है जो अभ्यास है। माँ तेरे कितने पुत्र, कुल कितने पुत्र। बेटा पांच। तीसरी बात भी कहा माँ एक बार और पूछ, देखिए एक बार और पूछता, तू सोच समझ के जल्दी पे जवाब न दे, तेरे कुल कितने पुत्र। पढ़िए माँ बाप, माँ एक बार फिर से पूछता, जोर देकर बोला याद दिलाए, तेरे कुल कितने पुत्र। माँ बाप में मेरे बेटे पांच। अच्छा माँ कुछ देर पहले कहा मैं भी तेरा पुत्र हूँ, अरे बेटा पांच का अभ्यास था। माँ तू ये तीन बार में एक बार भी कह देती कि मेरे छह पुत्र हैं तो युद्ध अभी खत्म हो जाए, लेकिन तूने तीन बार में पांच पांच कहा, कल युद्ध अर्जुन और कर्ण में होगा। मेरी माँ अर्जुन मरेगा तब भी तेरे पांच पुत्र रहेंगे और कर्ण मरेगा तेरे पांच। यहाँ कहानी का जो आशय मैं बता रहा हूँ कि जो माँ है कि बेटी है कि जो एक बार अभ्यास हो जाए उसे सुधारना मिटाना बड़ा ही, कितने लोग मैंने देखा हाथ जोड़ जोड़ करके कर 58 में संन्यास लिया, प्रचार धीरे धीरे अच्छा हुआ आप लोग मिले। हर वर्ग के लोग मुझे मिले कमरे में बैठाकर हाथ जोड़ के कहा कि आप संभाल के बोला करो, आपके बोलने से परेशानी होती है, ये होता है, मुझे सबको साथ लेकर चलना है। राम ने भी बानर को, भालू को, सबको साथ रखा, तो जगत में सबको साथ लेकर चलना है। आपकी बात बताऊं, अगर आपको प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति होना है तो कुक भी चाहिए, ड्राइवर भी चाहिए, पीए भी चाहिए, सीआईडी भी चाहिए, सीबीआई भी चाहिए, सब चाहिए, और आपको पट्टा वाला बनना है कुछ नहीं चाहिए। राम मतलब बड़ा आदमी बनना है तो सबकी जरूरत पड़ेगी, हनुमान के भी, अंगद के भी, नलनील के भी, और बड़े हो तो आपके सामने बिना बुलाए रावण भी आएगा, धोबी भी, मंथरा सब आएंगे, ये समस्या बनाएंगे और ये लोग समस्या हल करेंगे। सब पट्टा वाले के सामने रावण नहीं आएगा, लेकिन कोई छोटा मोटा होगा बानर, एक बात है, बाकी ऐसा नहीं, पट्टा वाले के दुश्मन, लेकिन साहब के दुश्मन उसके दुश्मन अंतर हो। तो आप अपनी तरफ से किसी को दुश्मन न माने, फिर भी दुश्मन होगा, विरोधी होगा, लेकिन जो आपके साथ है वो उसी में से रास्ता निकालेंगे, जैसे राम का रास्ता हनुमान निकाला, अंगद निकाला, नलनील ने निकाला, आपका तो हनुमान, तुम्हारी क्या जरूरत है, अंगद तुम्हारी क्या जरूरत है, बानर से कहा तो क्या जरूरत है, नहीं नहीं नहीं, आपको प्राइम मिनिस्टर से मिलना है, आपका जो ड्राइवर, तुम्हारी क्या जरूरत है, देख लो आपकी हालत क्या हो जाए, आठ मेहमान घर पे आने वाले हैं, कुक नहीं आया, आपकी क्या हालत, आपकी 50 लाख की गाड़ी है, मौके पर एक व्हील में हवा नहीं है, हवा भरने वाला नहीं मिल रहा है, 2 रुपए एक आदमी, फिर भी आपकी परेशानी, इसलिए किसी कीमत न, तो हम दुख कहाँ मोल ले रहे हैं जब उसका अस्तित्व नहीं है, पहले समझ नहीं पा रहे। आप दुख स्वयं पैदा ना करो, अब थोड़ी सी बात देख लीजिए, दुख कैसे पैदा हो, पहला गलत बोलने का अभ्यास न, कुछ भी हो जाए, चंदन से कहा गया भुजंग लिपटा फिर भी तो खुशबू देता, कहता है मेरा स्वभाव खुशबू देने का है, इसका भुजंग है, आप हैं चंदन, आप अपनी खुशबू को मत छोड़िए, फिर भी आपके आस पास विरोधी लोग लिपटे रहेंगे, लेकिन वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये गारंटी है, लेकिन अपनी सुगंध न छोड़ो। आए एक समझाने की बात, भगवान शंकर के गले में नाग है, हम लोग अभी नागपंचमी आई, हम लोग शंकर की पूजा करते हैं, इसलिए बड़े प्यार से कहता, बड़े हाथ जोड़ कहता, नाग आपकी रक्षा करता है, इसलिए बड़े प्यार से कहता, कभी सांप और नाग मत मारना, जब देखना तो शंकर को याद कर नमस्कार करना, और आपके सामने चला जाएगा, कुछ बोलेगा नहीं, ये गारंटी देता। अब क्या आप नाक देते लगने उठाते हो, तो भगवान ने भी उसको कुछ समझ दी, उसको कुछ समझ दी है, लेकिन मैं कहता हमारे भक्त हुए, संत हुए, चलो भक्तों संतों से अगर आपका संपर्क नहीं रहा, तो जो भरवार है जंगलों में भेड़ बकरी लेकर रहते हैं, भेड़ बकरियों पशुओं उनके पास भी नाग रहा है, लेकिन कभी किसी को, आप पूछो किसी भगवान, हमारी बात तो छोड़ो, संतों की बात छोड़ो, हित अनहित पशु पक्षी जाना, ये हमारे अंदर का शुभ अशुभ तो पशु भी समझ लेते हैं, आपका शुभ विचार उसको दुश्मन बना रहा है, बाकी वो दुश्मन, कई बार लोग मुझे कहते हैं कितने कि महाराज जी आपके यहाँ जो भी भोजन करूँ बहुत अच्छा लगता, घर में नहीं अच्छा लगता, मैंने कहा है यहाँ प्रसाद करके खाते हो, पहले ही सोचते हो कि आज कोई ना कोई कमी निकालूंगा और डांटूंगा, पहले ही सोच ले कमी निकालूंगा और डांटूंगा, और क्यों डांटेंगे कि 3 दिन पहले खाना नहीं मानी, इसलिए कोई बहाना चाहिए, ये मनोविज्ञान की बात। हमारा गुजरात तो ठीक है, बाकी एक प्रदेश तो ऐसा है, कहो तो नाम बता दूंगा, कि पत्नी से कहेंगे जाके पानी ला, फिर दाल में खुद नमक डाल करके गालियां देना शुरू कर देंगे, और वहाँ रुपया है पैसा, लेकिन इतने दुखी हैं कि बस पूछो मत। मैं वहाँ देखा हूँ, लोगों ने कहा हाँ स्वामी हम समस्या को क्रिएट करके बनाते, क्यों बनाते भगवान जाने। अब ये देख लीजिए, मैं आपसे पूछता, कम से कम गुजरात वालों से, पंजाबी बहुत अच्छा इस समय मेरे पास, पंजाब गुजरात दोनों अच्छे, उन लोगों की बात नहीं करता जिस प्रदेश की बात हो, कोई है भी नहीं, जा विचार कर। एक दिन नमक कम और ज्यादा हो गया तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन पिछली कोई बात याद आती है बहाना चाहिए, बहाना ढूंढ, क्योंकि कितने लोगों ने कहा कि स्वामी जी हम अपने अंदर के कंप्यूटर नोट करते हैं, चाहे पड़ोसी हो कोई, जब भी बहाना मिला तो बस पूछो, बेकार का समय, आखिर किसके लिए कर रहे हैं, क्या फायदा। एक सबसे आप सबसे कहता हूं, गलत सुनने का और गलत देखने का, गलत बोलने का अगर किसी तरह अभ्यास है तो उसे छोड़ने के लिए उसकी जगह क्या, टेप में क्या है। हम लोग इतना जो सुनाते हैं क्यों सुनाते हैं? टेप में एक गजल आपने टेप कर लिया, ठीक है, आपको गजल नहीं पसंद है तो टेप को तोड़ोगे, गाली दोगे, जलाओगे, वहां उसकी जगह दूसरा भजन का धुन अपने आप निकल जाएगा। आज विज्ञान भी गा रहा है, सत्संग करना, मंदिर में जाना, अच्छा सुनना, अच्छा देखना, ताली बजाना, भगवान की पूजा करना, स्पर्श करना, ये शब्द स्पर्श रूप ये हमारे संस्कार बने, इसलिए मंदिर मस्जिद की रचना की। तो जैसे टेप में गजल को निकालने के लिए न हाथ जोड़ना है, न लकड़ी मारनी है, न गाली देना है, न जलाना है, एक व्यवस्था है मशीन की, उसमें कहा दीजिए पहले वाला निकल जाएगा। इसलिए हमारे आपके दिमाग में जो कचरा है वो एक बार में नहीं निकलता, कई जन्मों जन्म का कचरा है, एक बार में नहीं निकलता, इसलिए रोज उसका अभ्यास करना पड़ता है। अच्छा सुनना, अच्छा देखना, अच्छा पठन पाठन, जो पाठ है इसके पीछे विज्ञान ही है, या विचार करो। आप हर संडे समय लेकर इतनी तकलीफ उठा क्यों आते? गोरज में हमारा, मैं अपने भाग से कहूंगा, मुरारी बाबू का दर्शन हुआ गोरज, भोजन के समय मैंने बापू से पूछा, बापू मैं संत हूं, आप संतों की बहुत ही प्रतिष्ठा रखते हैं, मान सम्मान रखते हैं, इसलिए जो बोलने जा रहा हूं ऐसा नहीं कि मैं आपका विरोध, अभी तक आप करोड़ों लोग कथा सुना दिए, मैं पब्लिक में नहीं बोलूंगा कि कौन सुधरा कौन नहीं सुधरा, लेकिन आप ये औसतन बताइए कि बापू अगर एक कथा में जितने लोग आते सुधर जाते तो क्या दूसरी बार कथा करनी पड़ती? कहे मनीषानंद जी, आप भी अपने प्रवचन में कहते हो ना कि भगवान ने मुझे जो धर्म दिया जो क्यों अदा करूंगा, मुझे भी जो संस्कार मिला है जब तक श्वास है करता रहूंगा, लेकिन मनीषानंद जिंदगी में एक भी अगर मेरी कथा से सुधर गया तो मेरा नया जन्म होने वाला नहीं, एक भी अगर सुधर गया। अब उनका कहने का मतलब क्या, वो अपनी जगह ठीक है, अब आप हर संडे आते हैं तो कुछ और आगे बढ़ेगा, कई बार तो देखता हूं कि दो संडे आगे जाते हो, फिर तीसरे संडे में चार संडे पीछे चले जाते, शिकायतें आती। ठीक है, कर रहा हूं। एक बार आप आगे बढ़ गए तो मुड़ के गए को वही जो पुराना अभ्यास है वो नहीं जाता, उसी को निकालने के लिए बार बार हमारे यहाँ कहावत है, बिल्ली और कुत्ते की दुश्मनी है, लेकिन बिल्ली के बच्चे को कुत्ते के बच्चे को साथ दूध पिलाइए तो उनकी दुश्मनी मिट जाती है, लेकिन हम साथ दूध पी करके बड़े होके ही दुश्मनी कर बैठे। दूध तो साथ में पियेंगे, भाई के साथ दूध पियेंगे, गोद में पिए, और आज भाई भाई का कितना, लेकिन ये बिल्ली का बच्चा कुत्ते का बच्चा साथ दूध पिए तो लड़ दे, नहीं लगा। और हम अब कुत्ते, कुत्ता वफादार है, दो कुत्ते लड़ते हैं मेरे ही, अगर चार पांच कुत्ता रखो कभी लड़ पड़ते हैं, ऐसा नहीं पराए तो छोड़ो, मेरे ही पाले हुए दो कुत्ते जब लड़ते हैं तो एक जब लेट जाता है तो दूसरा छोड़ देता है, और मेरे ही सिर से दूसरा लेटा रहे तो मारना शुरू कर देते हैं। कब लेते हैं कब इसे, शिष्यों की कितनी वफादारी। एक बात हो प्यार से कर तो सबसे पहले दुख से बचना चाहते हो तो किसी तरह गलत सुनने का, गलत देखने का, गलत बोलने का प्यास। अभी पेपरों में बहुत आ रहा है संतों की बात, मेरे पर भी फोन आया, मैंने इतने कहा कि संत जी आप और हम बच जाएं, अभी हमारा हमें आपको बहुत जिंदा रहना है, मरने के पहले आपका हमारा भी कोई कौभांड ना है, और कोई कौभांड अभी तो नहीं है, लेकिन भगवान से हर क्षण करें कौभांड होने में एक सेकंड भी नहीं। अभी तो आपसे कह रहा हूँ लेकिन अभी तक की गारंटी देता हूँ कोई कौभांड नहीं है, लेकिन कोई सेठ जी आकर के 10 लाख दिखाया और कहा जा दस्तखत कर दो फिर क्या होगा, कोई आके सोना चांदी दिखाया महाराज ये ले लो जरा कलेक्टर को लिख दो कि हमें जरा जाने दो तो एक मिनट में, लेकिन उसी क्षण को बचाने के लिए मैं आपसे कह रहा हूँ, गलती एक क्षण की होती है और सत्यानाश जिंदगी भर का हो जाए। आ रहा है पेपर, किसी ने कहा वो तो आपके मित्र हैं, मैंने कहा मित्रता तो नहीं जाएगी लेकिन उनके कौभान में मैं नहीं, साफ साफ बोला बड़े प्यार से कहूँ। दिल्ली से फोन आया, स्वामी जी आपके खास आदमी हैं, ये दिल्ली में भी लोग उनको जानते हैं कि आते हैं मिलने सब कुछ है, उन्होंने अब आप लोग थोड़ा बहुत मैं नाम ने उन्होंने 2 करोड़ रुपया दिया। मैंने कहा भाई मैं तो समझता गुजरात बहुत गरीब है, भरूच बहुत गरीब है, भरूच वाला भी 2 करोड़ देता है तो भरूच तो कितना अमीर हो गया, 2 करोड़ देने लायक तो बना, मांगा तो नहीं। लेकिन ये बात अब हिंदू में बोल रहा हूँ, अपने सामने बोल रहा हूँ, कोई मैं अमेरिका में नहीं बोल रहा, क्यों सत्य मुझे बताना पड़ेगा, वो पार्टी के नाम नहीं लेता क्यों, किसी पार्टी को बदनाम नहीं करना चाहता, मैं जानता था। मैंने कहा आप इस पार्टी के हैं अभी हैं कि नहीं, कहा हूँ राजीनामा नहीं दिया, कहा ने रामायण को मानते हो, कहते हाँ मानता हूँ, राम के लिए श्रद्धा है लेकिन मेरे करने के बाद श्रद्धा टूटेगी तो नहीं, क्योंकि मैं भी मानता हूँ। कहा नहीं नहीं स्वामी जी आप कहिए सही। मैंने कहा आप 2 करोड़ की बात करते हो, यहाँ पूरी लंका जब विभीषण को दी गई तब भेद मिला रावण का, आप तो 2 करोड़ की बात करते हो। कहते आपकी छोटी बीचे थे हम आगे नहीं कुछ पूछूंगे, अरे तो पहले से चलाए। मैंने कहा पूरी लंका दी गई कि नहीं, आप 2 करोड़ की बात करते हो तो मैं आपसे कहूंगा, बुरा न मानिएगा, मनोविज्ञान कहता है दूसरे को 2 करोड़ मिला इसलिए मैं जल गया, अरे मुझे तो कोई 1 लाख देता तो भी ले लेता, 2 करोड़ तो बहुत होगा, अब कोई 1 लाख नहीं देता इसलिए ईमानदार बना हुआ, कोई गुलाब जामुन नहीं खिलाता इसलिए त्यागी हूँ, इसलिए मैं आप सब से कहा ये सब पहले चल रहा चल, कभी किसी की निंदा मत करो, जिसको देना हो करे वो करे, हमने हमें आपको उसमें नहीं, लेकिन सुन करके हमें ऐसा भी रास्ता नहीं निकालना कि हमें भी 2 करोड़ दे, 2 करोड़ तो देगा आश्रम बदनाम हो रहे हैं, कोठिया बदनाम हो रहे हैं, तो हम आप क्यों नहीं, आज नहीं कल कभी तो परिणाम उसका खराब। हमारे यहाँ बड़ी सुंदर बातें कर, पहली बटन उतावल में गलत काज में लग गई मेरे प्री, आगे कितने बुद्धिमानी करो, लेकिन शुरुआत जब गलत हो गई तो गलत ही होगा, इसलिए शुरुआत में सुनना देखना गलत हो गया तो आगे सब गलत, सब बस एको संभालो। कोई कितना सुनाए कितना दिखाए लेकिन हमें गलत रास्ते, न गलत सुनना है न गलत रास्ते, आज क्या हल। तो दुख तो हम मोल ले रहे, चलो हमारे जलाराम बापा बैठे, मैं जलाराम बोलता हूँ, बाबू भाई कितनी सेवा करते, हम लोग जाते हैं तो जलाराम बापा के नाम से जब जन्मदिन मनाया जाता है कितनी बढ़िया बढ़िया चीज खिलाते हैं, 56 भोग लगता है। जलाराम बापा तो भगवान है, 56 भोग ले लेते हैं और कब नहीं होता, लेकिन मनीषा ने सामने रखो तो सोचते लाओ 2 किलो खा लूँ, 2 किलो खाने के बाद डॉक्टर बुलाऊंगा, क्यों बुलाऊंगा, ये मेरा कर्म है, हमें खाना 100 ग्राम खा गया इतना, इसलिए बाबू भाई ने कहा कि स्वामी जी अच्छी तरह से खाएं, इनकी भावना अच्छी थी लेकिन मेरी लालच ने, मेरी मर्यादा ने, मेरे गलत विचार ने मेरा सत्यानाश किया, बाबू भाई ने 56 प्रकार के भोग ने हमारा सत्यानाश नहीं किया। लेकिन हम तो कहे बाबू भाई आपने इतना बना के खिला दिया, एक चीज याद रखो, मैं बाद में इससे साफ करूंगा लेकिन अभी इतना बता दो, खास करके बच्चों को बड़ी अच्छी बात इंद्रवदन पूछे, दुख भंजन अस्तित्व में दुख नहीं है, हमारा ज्ञान हमें दुख पैदा करता है, लेकिन हमारे दुख का जो भंजन करे मिटाए, चाहे वैद्य है चाहे डॉक्टर है चाहे माता है पिता है गुरु है, दुख भंजन, दुख मैंने पैदा किया, हमारे दुख को वैद्य मिटाए, डॉक्टर मिटाए, माता मिलाए मिटाए, पिता मिटाए, गुरु मिटाए, पड़ोसी में जो आपके दुख का भंजन करे, जो दुख को मिटाए, वही भगवान है, और जो दुख को बढ़ाए वही शैतान। संकट मोचन, दुख भंजन, भीड़ भंजन, सौराष्ट्र में भीड़ भंजन महादेव, भीड़ का मतलब दुख ही होता, तो याद रखो माता पिता मित्र गुरु, माता पिता मित्र गुरु भगवान, ये दुख का निवारण करते हैं, दुख देते नहीं, दुख तो हमारा अज्ञान हमारे पास लाता है। खा गए 2 किलो मिठाई, बोल गलत बोल गए कि अंधे की संतान अंधी होती, जार पी लिया, आज भी कितने केस में जानता हूं, आवेश में आकर लड़का या लड़की जात पीते हैं और बाप बेचारा कितना परेशान होता है, हाँ पुलिस को भी हाथ जोड़ता, आपको भी, डॉक्टर से नहीं बचाओ बचाओ, बाकी दूसरे दूसरे देखते रहते। हमने तो यहां तक सुना है, आपको बताऊं, आप जो समझो, कोई आदमी दुख के कारण, गुजरात की बात नहीं बाहर है, किसानों की बात है, लेकिन जोक नहीं है, मुझे सुना है लोगों ने, एक प्रदेश की बात है, दुखी होकर वो जहर पी गया, जहर क्यों पिया वो कहानी मैं आपको सुनाऊंगा, और इस कहानी का जिक्र शरद चट्टोपाध्याय ने किया है, नहीं एक मतलब कहानी का कोई आधार लिया है, लेकिन ये जो मैं सुना रहा हूँ तो 7-8 साल पहले की बात है, और सच चट्टोपाध्याय वाली कहानी क्या अंतर, वो तो मनोवैज्ञानिक थे, ये जो सुना रहा हूँ एक किसान की बात, हमने आपसे देवा किया, बैंक से देवा किया, ये किया, मैं किसान हूँ ठीक से नहीं हुआ, साहूकार सब परेशान कर रहे ये कर रहे, फिर मैं बहुत गरीब हूं, एक आदमी कि दो शादियां दोनों दो शादियां दो पत्नी मर चुकी है, बड़े बड़े बच्चे हैं, मुझे इशारा दिया गया बाप को कि आपकी लड़की 16 साल की है, मेरी दो पत्नियां मर गई हैं, अगर शादी कर दो जब उसकी लड़कियां हैं 19-20 साल की, ये सही हकीकत। तो हम आपको पैसा दे देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बाप ने सोचा कि जीते जीते, जब बाप तंग आकर जहर खा के मर गया तब लोगों ने लड़कियों की मदद लड़की की मदद करके शादी किया, लेकिन जीते जी कोई मदद करने के लिए अब क्या दूंगी। शरदचंद्र चट्टोपाध्याय की भी कहानी है कि इसी से मिलती जुलती है। पहले एक समय था कि बंगाल में भी बड़ी गरीबी थी, जमींदारों का बड़ा त्रास था। उस कहानी में भी यही बताया गया कि गरीबी के कारण क्या बाप की हालत होती है, कोई मदद नहीं करता, कुछ नहीं। लेकिन हाथ जोड़ के कहता हूं उस कहानी में रुख दूसरा, बाप को दुखी देख करके लड़की जहर खा के मर जाती। ये कहानी जब शरद जी ने लिखा तो हाहाकार मच गया, क्योंकि वहां भी एक 60 साल का व्यक्ति था जो 12 साल की लड़की शादी कर दी था, मेरी लड़की मामलों में लड़की ने सुना और शरदचंद्र चट्टोपाध्याय का एक बात बता। तो जा विचार कीजिए, हम आप एक सामाजिक तौर पर एक और मनोवैज्ञानिक कहानी सुना दो जो मैं कहना चाहता हूं, मनोवैज्ञानिक है सच नहीं। मैंने अपने पड़ोसी से कहा कि मेरे बच्चे को बड़ी भूख लगी है, दो रोटी दे दो। कहा पानी बरस रहा है, दो रोटी थी मैंने अपने बेटे को खिला दिया, पड़ोसी बोल ऐसा करो लोट में कहीं से मांग लाऊंगा, आप लकड़ी दे दीजिए, आपके पास लकड़ी बहुत है, आपकी लकड़ी से मांगा हुआ लोट ला के रोटी बनाकर नमक से बच्चे को खिला दूंगा। पड़ोसी कहता है, मनोवैज्ञानिक कहानी, पड़ोसी कहता है पता नहीं कितने दिन तक पानी बरसेगा, लकड़ी अगर कई दिन तक पानी बरसा तो लकड़ी नहीं होगी तो मैं बच्चों का भोजन किससे बनवाऊंगा, नहीं दूंगा। कहानी का मोड़ आया, मेरा बेटा भूख से रात में मर गया। तो सुबह पड़ोसी आके कहता है कि चिंता न करना स्वामी जी, आपके बेटे के लिए सब धान के लिए 10 मन लकड़ी दूंगा। कहानी कहती है भोजन पकाने के लिए 2 लकड़ी पड़ोसी नहीं दिया और मरने के बाद 10 मन लकड़ी जलाने के लिए दिया। कैसी थी ये कहानी का कहने का मतलब क्या? जो घटना पड़ोस में घटी मेरे साथ भी घट सकती है, इसलिए आप सबसे कहूंगा अगर समर्थ हो और कभी आपके सामने ऐसा सवाल आए तो मेरे प्रिय आत्मन भगवान के नाम से मदद कर देना, भगवान आपको बहुत देगा। हमारा आपका जीवन हो सके तो किसी को बचाओ, लेकिन मेरे कारण किसी का जीवन भगवान दे। कई जगह घटनाएं घटी हैं, फिर क्या होगा? मेरा लड़का बीमार पड़ा तो शंका जाएगी कि मैंने उसको लकड़ी नहीं दी, उसकी हाय लगी, फिर ये जाएगा भाई कितने लोग मुझे कर रहे, महाराज जी किसी ने कहा तो मदद नहीं किया, उसका तो नहीं है। मैंने कहा आप मदद कर सकते हैं, कहा हाँ तो हो सकता है, हाय लगी। इसलिए आप लोग जरा ख्याल रखिएगा, भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया है और देता रहे, लेकिन जहां कर सकते हो नहीं करना, जहां कर सकते हो नहीं करना वो भी कमजोरी है, और जहां नहीं कर सकते उसकी प्रतिज्ञा करना वो भी समय करूं वो भी कमजोरी है, जहां बोलना चाहिए नहीं बोलते वो भी कमजोरी है, और जहां नहीं बोलना चाहिए बोलते वो भी कमजोरी से बचो। ये दुख से बचो, हो सके तो आशीर्वाद लो किसी के हाय में। यहाँ सब अच्छे अच्छे लोग बैठे, खासकर बाबू भाई कितनी तकलीफ उठा करके वो व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन एक चीज बताऊं, बाबू भाई दिन रात जागेंगे, और भी हैं लोग ऐसा नहीं, लेकिन उनको नजर, बाबू भाई दिन रात जाग करके व्यवस्था करेंगे, 4 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक 1000 लोग खिलाएंगे, लेकिन बाबू भाई मुड़ के कितने लोग पूछते हैं कि बाबू भाई आपको क्या तकलीफ। ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं, यही आपसे कहूँ। ईश्वर हमें देख रहा है, जलाराम देख रहे हैं, साईं बाबा देख रहे हैं, गुरु देख, हे गुरु हे साईं बाबा, हमें शक्ति दो करते रहे, हमें किसी से कोई मतलब, ये हिसाब किताब नहीं, नहीं तो लोग दिमाग खराब कर। मनीषानंद जी आप इतना करते हो, लोग आके क्यों? मैंने कहा ईश्वर दे रहा कर रहा हूँ, ईश्वर हमारे संबंध अच्छे, कोई आए कि ना, इससे क्या फर्क है, हिसाब किताब नहीं कर, हमें भी हिसाब। अरे भगवान जब हिसाब मांगेगा ना तो आप नहीं दे सकते, हवा के हिसाब मांगे, पानी के हिसाब मांगे, माँ के दूध के हिसाब, माँ के दूध के हिसाब दे सकते हो? फिर जब बड़े होते तो हर महीने माँ को 100 रुपया देते हो, कती पैसा 150 दे, कहा आपकी बहू ले गई अगले महीने दो, सुना है इसलिए कहता। जिस दूध की कीमत नहीं दे सकते, 100 की जगह 150 रुपया भी महीना देने में, और पत्नी आपके सामने उसकी सहेली आ जाए तो 350 का नाश्ता करा देगी, वो दे दो। फिर मुझे कहते हैं महाराज जी तकलीफ है, माँ बोलेगी नहीं, लेकिन थोड़ा तो मन में उठेगा, थोड़ा तो उठेगा। एक बात कर, मूक प्राणी का क्या, आप मूक प्राणी की सेवा करो, देखो कितना आशीर्वाद। ये आपके बेला है, टाटा है, इनका जीवन देखिए, मूक प्राणियों की सेवा करो। तो हमारे हिंदू धर्म में मूक प्राणी की भी सेवा करने वाले लखपति, करोड़पति, अरबपति, और ऐसे भी हैं करोड़पति बने, लेकिन न मुंह की सेवा किया न बोलने वाले किए, तो आज जेल में चले गए, वो सब खत्म हो गए। तो दुख हम बोल दे रहे हैं, गलत सुनकर गलत देखकर, इसलिए इंद्रदन कहा दुख भंजन, सब तो है किसी क्षण किसी काम दुख हो जाए। सीता की बात, सीता ने स्वयं सीता से कहा दुख का कारण मेरे राम नहीं, उनमें जबरदस्त वीरता हो सकती है, दुख का कारण मेरा ज्ञान है, मेरी बोली है, मैं मर्यादा के बाहर गई, लेकिन मेरे प्रभु दुख भंजन है, दुख मैंने पैदा किया, लेकिन मेरे दुख को मेरे राम ही दूर कर सकते हैं, बाकी कोई